सफ़ा नंबर 509। मेरे नज़दीक इस किस्म की सोसाइटी इस्लाम है। मेरे ख्याल में डिकनेक्शन का ख्याल अब जहन अभी तक यूरोप वालों के इस कदीम नज़रिए से आज़ाद नहीं हुआ कि इस्लाम सफाकी और खूनरेजी का सबक देता है। दरअसल खुदा की अर्जी बादशाह सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस नहीं बल्कि तमाम इंसानों इसमें दाखिल हो सकते हैं, बशर्तिया कि वो नस्ल और कौमियत के बुतों की परतश तर्क कर दें और एक दूसरे की शख्सियत तस्लीम कर लें। लीगें, हुक्म बरदारियाँ, मुआहदे जिनका जिक्र कनीज ने किया है और मलकूतें, ख्वाह व जमहूरियत ही की कबा में पोशीदा हों, इंसान की फलाह का सबब नहीं बन सकती। इंसानी फलाह तो इसी सूरत मुमकिन है कि तमाम इंसानों में मसावात और हुर्रियत का दौर दौरा हो। मेरा दावा है कि इसरार खुदी का फलसफा मुसलन सूफिया और हुक्मा के अफकार व मुशाहदात से माखुज है। बरगसा का तसव्वुर जुमा भी हमारे सूफिया के लिए नई चीज़ नहीं, बदकिस्मती से अहले मगरब इस्लामी फलसफा की तारीख से नाशनाए महज हैं। मसनवी के अंग्रेजी तर्जमा पर मशहूर अमरीकी अदीब और नकाल हर्बर्ट रेड ने भी तबसरा किया जो न्यू एज मोरखा 25 अगस्त 1921 में छपा। उन्होंने इकबाल का मुवाजना अमरीकी फलासफी शायर विटमेन से करते हुए तहरीर किया कि मसनवी ने हिंदी मुसलमान नौजवानों के ख्यालात में एक महशर बर्पा कर दिया और एक हिंदू मुसलमान ने लिखा है कि इकबाल हम में मसीहा बनकर नमूदार हुआ है जिसने मुर्दा अजसाम को जुम्बश देकर इनमें हयात ताज़ा की लहर दौड़ा दी है। इकबाल की नुक्ता आफरीनी के तलिस्म ने अफकार की गोना गोनी से वहादत ईमानी पैदा की है और एक ऐसी मतलक मंतक को जो महज मदरसों के तलबा तक महदूद थी एक आलमगीर पैगाम की सूरत में बदल कर दुनिया के सामने रख दिया है। इसी बिना पर इसने इंसान कामल के तखील के सदाकत का नतशे या विटमैन की निस्बत ज़्यादा वसूख से अदराक किया है। मसनवी के माकूलात पर हिंदुस्तान, यूरोप और अमेरिका में तो अहले इल्म ने राय जनी की, लेकिन दुनिया इस्लाम में खामोशी तारी रही। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की और अरब ममालक पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद कौमी और वतनी आज़ादी की तहसील की खातर मकामी जंगों में मसरूफ़ हो गए। इन तमाम ममालक में मगरबी तर्ज की इलाकई कौमियत और वतनियत को बड़े अहतमाम से अपनाया जा रहा था। इसलिए ईरान व अफगानिस्तान के अहले इलम या तुर्की और अरब ममालक में फारसी जानने वाले आलमों ने मसनवी के मकूलात पर इजहार ख्याल करना ज़रूरी ना समझा। दरअसल इस अफरा तफरी के दौर में दुनिया इस्लाम की मुख्तलिफ अकवाम के लिए मसनवी के पैगाम की ना तो कोई अहमियत थी और ना वो इसे समझने को अभी तैयार थी। गोया जिस मिल्लत को ये पैगाम दिया गया वो इसे समझने के काबिल ना थी। और इकबाल को भी इस बात का एहसास था। इन अयाम में उन्होंने बारहा अपने इस तासर का इजहार फरमाया कि जिस मिल्लत के लिए ये मसनवी कही गई है वो ना तो ठीक तरह से इनके मफहूम की तह को पहुँचती है और ना इस आवाज़ और पैगाम को सुनती है, मगर जिन कौमों को इस मसनवी में खताब नहीं किया गया वो इसका मतलब समझ गई हैं। मसनवी इसरार खुदी से मुतल्लक बहस से जाहिर है कि इकबाल तसव्वुफ़ वजूदिया से मुतनफ़र हो गए थे, लेकिन वह तसव्वुफ़ इस्लामिया के हामी थे और आखिरी दम तक हामी रहे। दरअसल उन्होंने अपने अकीदे के तयन के सिलसिला में मसलक के वहदत वहदतुल वजूद के मुकाबले में वहदतुल मसलक वहदतुल शहूद से ज़्यादा असर कबूल किया। वो मुफक्कर व शायर अहियाए इस्लाम थे, इसलिए इस्लाम की असल पाकीज़गी की तरफ इनका रुजू करना लाजमी था। इस एतबार से वो इस लड़ी का एक मोती थे जिसमें इब्ने तमीमा और शेख अहमद मुजद्दद अलफसानी जैसी बरगजीदा हस्तियों को परोया जा सकता है, मगर भी नकादों ने फलसफा इस्लामी की तहरीक से नावाकफियत के सबब इनके अफकार को नतशे और बरगसां की आवाज़ बाजगश्त करार दिया। सफ़ा नंबर 511। हालांकि इंसान कामल या इर्तकाए हयात का तखयल मुस्लिम सूफिया व हुक्मा में सदियों से मौजूद था और इसका सबूत अल जिली जलालुद्दीन रूमी, इब्ने मस्कोया और इब्ने माजा पाजा की तहरीरें हैं। नतशे के फोकल इंसान का मुवाजना इकबाल के इंसान कामल की बजाय अगर 12वीं सदी ईस्वी के उंदलसी मुस्लिम मुफक्कर इब्ने बाजा के मुतहद से किया जाए तो गुमान होगा कि नतशे ने शायद इसके अफकार का मुताला कर रखा था, क्योंकि इब्ने बाजा की कुतब खसूसन किताबुल तदबीरुल मुतहद और किताबुल अतसाल अल अकल बल इंसान का तर्जमा अबरानी और गलबन लातीनी जबानों में यूरोप में मौजूद था। इब्ने पाजा का मोहद بھی نتشے کے فوق الانسان کی طرح صحبت انسان سے گریزہ ہے، اور شریعت اسلامیہ کو نظر انداز کرتے وقت ارتقاء عقل کے تسلسل پر ایمان رکھتا ہے۔ فلسفہ نتشے کے برعکس گو ابن پاجہ فلسفیانہ طور پر خدا کی ہستی کا بحیثیت خالق و مالک کائنات قائل تھا، پھر بھی اس کے افکار کے سبب اس کے مخالفین نے 1138 میں اسے زہر دے کر مروا دیا۔ اقبال غالباً ابن پاجہ کی تحریروں سے ناشنا تھے، ورنہ نتشے کے زمن میں اس کے ذکر ضرور کرتے۔ اقبال مغرب کے انسان جدید سے اسی طرح بیزار تھے جس طرح مشرق کے انسان مردہ سے۔ وہ جلال الدین رومی کی طرح کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھے جو حقیقی معنوں میں کامل ہو، اس لیے مثنوی کی ابتدا جلال الدین رومی کے ان اشعار سے کی، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کز دام و دو معلوم لم و انسانم آرزو ست، زی ہمر ہاں سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزو ست، گفتم کے یافت می نا شود جستا ایم ما، گفت آنکا یافت می نا شود آنم آرزو ست۔ مغرب کا جدید انسان مغربی اقوام کی مادی ترقی کا حاصل ہے، مجموعی حیثیت سے یہ ترقی ان اقوام کے افراد کی انفرادی آمدنی میں اضافے سے سامنے آئی۔ اس کی وجہ سے ہر قسم کی پیداوار میں اضافہ تھا، جس کے نتیجے میں ان کی ذہنیت اور طریق کا حیات کے بارے میں ان کے زاویہ نگاہ میں تبدیلی رونما ہوئی۔ ترقی کے اس تصور کا شمار عموماً مغربی اختراعات میں کیا جاتا ہے، اس کا تعلق مغربی معاشرے کے اس سلسلہ ارتقاء سے ہے جو یورپ میں طریقے احیاء علوم سے لے کر صنعتی انقلاب تک جاری رہا۔ اس سلسلہ ارتقاء کے دوران مغرب نے رفتہ رفتہ ساری دنیا کو ایک تجارتی منڈی میں منتقل کر دیا۔ اس کے نتیجہ میں مغرب میں بیوپاری معاشرہ وجود میں آیا، اور پھر یہی بیوپاری معاشرہ پسماندہ اقوام کی لوٹ گسوٹ کے ذریعے اسودہ حال اور مول ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ بن گیا۔ ارتقاء کے سبب کئی مادی نوعیت کی تبدیلیاں اس معاشرے میں آئیں، اور یوں سرمایہ دارانہ نظام کی ابتدا ہوئی۔ زیادہ پیدا کر سکنے کی سہلیت نے مغرب کو ساری دنیا پر غالب آ جانے کی قوت حاصل کرنے کا ایک نیا جنون عطا کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ ملوکیت آئی، نو آبادیات قائم کی گئی، اور پسماندہ اقوام کا استحصال شروع ہوا۔ مغرب میں بھی ان تبدیلیوں کے سبب مغربی اقوام میں رقابت، کشمکش اور تصادم کی فضا پیدا ہوئی، جس نے اس ایک طرف تو پہلی جنگ عظیم کی صورت اختیار کی، اور دوسری طرف روس میں اشتراکی نظام کے قیام کی۔ بس اقبال کے اس عہد میں مغرب کا انسان ایک ایسا نیا انسان تھا جس کے ذہنی رجحانات نئے تھے۔ وہ بنیادی طور پر مغربی انسان تھا جسے سائنس کی ترقی نے رفتہ رفتہ صنعتی انسان، تکنیاتی انسان، تھوک انسان، یک طرفہ انسان، بے طاقت انسان، ناراض انسان، تنہا انسان وغیرہ بنا دیا تھا۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حکمیت تسلیم کرتا تھا جس کی وہ خود پیداوار تھا، انفرادی عقل اور عمل کی پھرتی پر یقین رکھتا تھا، لا دین تھا، اور اپنے معاملات کو دنیا دارانہ زاویہ نگاہ سے سلجھانے کا قائل تھا۔ متکبر، خود غرض اور اخلاق سے بگانا تھا، اور زندگی میں صرف مادی ذرائع سے مسرت کی تحصیل کے لیے کوشاں تھا۔ وہ ہر لحظہ متغیر حالات کا پابند تھا، اور اسے اپنی تقدیر پر کوئی غلبہ حاصل نہ تھا۔ بقول اقبال، وہ ایسا پست فطرت انسان تھا جس سے شیطان تک بیزار تھا، کیونکہ وہ انکار کی حمیت سے ناواقف محض تھا، اور شیطان کے حکام کی بے چون چراں تعمیل کرتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے انسانوں پر مشتمل معاشروں کا ایمان فقط سیاسی و اقتصادی قوت میں اضافہ کرتے چلے جانا تھا، اور اسی سبب یہ معاشرہ ایک دوسرے سے دائمی طور پر مصروف پیکار تھے۔ اقبال میں مغرب کے جدید انسان کی خامیوں اور کمزوریوں کا مشاہدہ کرنے ہی سے صحیح معنوں میں انسان کامل کے لیے جستجو کی تاریخ پیدا ہوئی۔ یہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر ایک عملی ضرورت تھی۔ اسی سبب اقبال کا انسان کامل محض متصوفانہ یا فلسفیانہ تخیل کے خلا میں معطلق نہ تھا، بلکہ ان کی نگاہ دوربین نے تاریخ تمدن اسلامی کے تسلسل میں مرد مومن کی حقیقی صورت میں اس انسان کامل یا مرد فردن کو پا لیا۔ इसरार खुदी के अंग्रेजी तर्जमे के दिबाचे में निकलसन ने दुरुस्त कहा है, इकबाल के एहसासात एक पुरजोश मुस्लिम के एहसासात हैं। इसका इस्लाम से ये अकीदतमंदाना तल्लक, दुनिया में ऐसी हुकूमत चाहता है जिसमें मुसलमानों के लिए कौमियत और वतनीत की रुकावटें हायल ना हों। इसका नसब लाइन एक ऐसे आज़ाद मुस्लिम मुआशरे का क्याम है जिसका मरकज़ काबा हो और जो ईमान व ईकान के साथ एक अल्लाह और इसके रसूल पर मजबूत अकीदा रखता हो। इकबाल ने इसरार खुदी और रमूज बेखुदी में इसी की तलीम दी है। सफ़ा नंबर 514, माखज बाप 12। नंबर 1, शुमारा अक्टूबर 1953 और शुमारा अप्रैल 1954। नंबर 2, बाकियात इकबाल मरतबा अब्दुल्ला कुरेशी सफ़ा 387। नंबर 3, मजमून इसरार खुदी की अशात से पहले इज़ अब्दुल मजीद सालक मतबुआ हफ्त रोज़ा कंदील 21 अप्रैल 1950। नंबर 4, इंतसाबी अशार बानवान पेशकश के लिए देखिए सरवर रफ्ता मरतबा गुलाम रसूल महर व सादक अली दलावरी सफ़ा 68-69। नंबर 5, दिबाचा इसरार खुदी अशात अव्वल मकालात इकबाल मरतबा अब्दुल वहद मईनी सफ़ात 153-159। नंबर 6, पूरे मतन के लिए देखिए सरवर रफ्ता सफ़ात 70-72। नंबर 7, मतालब इसरार व रमूज सफ़ात 20-26। नंबर 8, अतालीक खतूत नवीसी मरतबा ख्वाजा हसन निज़ामी सफ़ात 41। नंबर 9, देखिए दिबाचा पाकिस्तान के मौजद अव्वल डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के खतूत बनाम ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी मरतबा ख्वाजा हसन निज़ामी। नंबर 10, महनामा मुनादी दिल्ली जून 1950। नंबर 11, इस ख्वाब की तायद मसनवी के तमीदी अशार और इस ख़त से भी होती है जो इकबाल ने महाराजा किशन प्रसाद के नाम मोरखा 14 अप्रैल 1916 को लिखा था। मसनवी में इन अशार की तरतीब मुख्तलिफ है। नंबर 12, मकालात इकबाल मरतबा अब्दुल वहद मोइनी सफ़ात 160-170। नंबर 13, मकातीब इकबाल बनाम मोहम्मद नियाजुद्दीन खान सफ़ा 1। नंबर 14, इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा 2 सफ़ात 49-50। नंबर 15, ऐज़न सफ़ा 52। नंबर 16, मकालात इकबाल मरतबा अब्दुल वहद मोइनी सफ़ात 171-181। नंबर 17, मकातीब इकबाल बनाम मोहम्मद नियाजुद्दीन खान सफ़ात 234। नंबर 18, सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफ़ात 165-166। नंबर 19, ऐज़न सफ़ा 170। नंबर 20, ऐज़न सफ़ा 172। नंबर 21, अनवार इकबाल मरतबा बशीर अहमद डार सफ़ात 228-277। नंबर 22, मकातीब इकबाल बनाम मोहम्मद नियाजुद्दीन खान सफ़ा 4। नंबर 23, इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा अव्वल सफ़ात 34-36। नंबर 24, ऐज़न सफ़ात 41-45। नंबर 25, मकातीब इकबाल बनाम मोहम्मद नियाजुद्दीन खान सफ़ा 6। नंबर 26, मकालात इकबाल मरतबा अब्दुल वहद मोइनी सफ़ात 182-186। नंबर 27, खुतबात इकबाल मरतबा शेख हुसैन रज़ाकी अंग्रेज़ी सफ़ात 160-163। नंबर 28, देखिए इकबाल और तसूफ मरतबा आल अहमद सरवर श्रीनगर सफ़ात 83-84 और इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा 2 सफ़ात 53-57। नंबर 29, ऐज़न सफ़ात 58-62। नंबर 30, इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा अव्वल सफ़ात 52-55। नंबर 31, इकबाल महासरीन की नज़र में इज़ अब्दुल्ला कुरेशी सफ़ात 425-428। नंबर 32, अनवार इकबाल मरतबा बशीर अहमद डार सफ़ात 182-186। नंबर 33 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा अव्वल सफात 110 111। नंबर 34 ऐजन सफात 84 88 ता 97 नीस देखिए मुतालबे इसरार वरमूज इज गुलाम रसूल महर सफात 30 ता 32। नंबर 35 खुतबात इकबाल मरतबा शहद हुसैन रजाकी अंग्रेज़ी सफात 183 ता 188। नंबर 36 रोजगार फ़कीर इज़ फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन जिल्द दोम सफ़ा 168। नंबर 37 खुतबात इकबाल मरतबा शाहिद हुसैन रजाकी अंग्रेज़ी सफात 179 ता 196। नंबर 38 इकबाल चौधरी मोहम्मद हुसैन की नज़र में मरतबा मोहम्मद हनीफ शाहिद सफात 87 ता 93। नंबर 39 रोजगार फ़कीर इज़ सैयद फ़कीर वहीदुद्दीन जिल्द दोम सफ़ा 168। सफ़ा नंबर 517 बाब 13 खाना नशीनी यूरोप में जंग अजीम के शुरू होते ही बरसगीर में अंग्रेज़ी हुकूमत का रवैया सख्त होने लगा। 1914-15 में पंजाब के काश्तकारों में बेचैनी फैली। बंगाल में दहशत पसंदों की इनकलाबी कार्रवाइयाँ शिद्दत अख्तियार करने लगीं। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा से मुल्क बदर किए जाने वाले सिखों ने हिंदुस्तान वापस पहुँच कर मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर दिया। अंग्रेज़ी हुकूमत को खदशा था कि बरसगीर में बेचैनी मुजाहरे और दहशत पसंदों की इनकलाबी कार्रवाइयाँ कहीं आम बगावत की शक्ल ना अख्तियार कर लें। इस खौफ के पेश नज़र 1917 में रूलट कमीशन का तकरर किया गया, जिसका मकसद सियासी मुजरमों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बारे में गौर करना था। जंग अजीम के खात्मे के से कुछ अरसा बेशतर जब इतिहादी ताकतों की फतह यकीनी हो गई तो बरतानवी वज़ीर आज़म लॉयड जॉर्ज ने 5 जनवरी 1918 को ऐलान किया कि तुर्कों को खालसतन तुर्की इलाकों यानी एशिया चुकक के जरखेज़ मैदानों थ्रेस और इनके दारुलहुकूमत कस्तनतूनिया से महरूम ना किया जाएगा, लेकिन आर्मीनिया शाम लुबनान अराक उर्दन फ़लस्तीन और अरब के इलाकों में आबाद अकवाम को इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने अपने मुल्कों में आज़ाद कौमी हुकूमतें कायम करें। 8 जनवरी 1918 को अमरीकी सदर वेल्सन ने भी एक ऐसा ही ऐलान किया कि बाद में जमीयत अकवाम के वर्ज़े वजूद में आने पर इसने भी ऐलान किया कि वह छोटी कौमों की आज़ादी व खुद मुख्तियारी की जामन व मुहाफ़ज़ होगी। मगर जंगे अजीम के खात्मे पर फाते इतिहादी ताकतों में खुफिया मुआहदों के जरिए उस्मानिया तुर्की के इलाकों का बंटवारा हो चुका था। थ्रेस ममा एड्रियानोपल यूनान के हिस्से में आया। समरना भी एशिया चुकक से अलहदा करके यूनान को दे दिया गया। अंग्रेज़ कस्तनतुनिया पर खुद काबज हो गए। सुल्तान खलीफा इनका कैदी बन गया और इसके अख्तियार छीन लिए गए। एशियाई चुकक के बाकी मानदा हिस्से में तुर्कों को आज़ादी से हुकूमत करने के हक़ से महरूम कर दिया गया और इन्हीं अपनी इस हाई अकलियत पर कोई अख्तियार न रहा। शाम ममा लुबनान फ्रांस के सुपुर्द कर दिए गए। अराक उर्दन और फ़लस्तीन के इलाके अंग्रेज़ों ने हथिया लिए। यूरोप की अमारी ताकतों की इस सौदाबाजी से मुसलमान हिंद ना सिर्फ हुकूमत बरतानिया से मायूस हो गए थे, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि इनके साथ गद्दारी की गई है। रूलट कमीशन ने सियासी मुजरमों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के सिलसिला में जो सिफारशात अंग्रेज़ी हुकूमत को पेश की, इनमें इंतजामिया और पुलिस को नावाजब अख्तियार दिए गए थे। पुलिस जिसे चाहे बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। अदालती हुक्म के बगैर जिस मकान की तलाशी लेना चाहे ले सकती थी और सियासी मुजरमों के लिए सख्त और मुतकमाना सजाएं तजवीज़ की गई थी। बिलाखिर इन सिफारशात ने रूलट एक्ट की सूरत अख्तियार की, जो शदीद मुखालफत के बावजूद 18 मार्च 1919 को पास हो गया। गांधी ने इस एक्ट के खिलाफ हड़तालें और मुजाहरे कराए। मोहम्मद अली जिना ने एहतजाजन वासराय की इंपीरियल काउंसिल की रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया। रूलट एक्ट के नफाज से हिंदुस्तान भर में इत्तेजाजी जलसों और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके जवाब में अंग्रेजी हुकूमत ने जुल्म व तशद्दद और कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया और इसकी लपेट में पंजाब भी आ गया। ये जमाना इकबाल की खाना नशीनी का जमाना था। दरअसल इकबाल की अजलत नशीनी के ज़माने का आगाज़ तो 1914 ही से हो गया था। मौलाना शौकत अली ने इन्हीं अलीगढ़ कॉलेज के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सालाना इजलास में शिरकत के लिए दावत भेजी। इकबाल ने जवाब में तहरीर किया, सफ़ा नंबर 519, भाई शौकत इकबाल अजलत नशीन है और इस तूफ़ान बदतमीज़ी के ज़माने में घर की चार दीवारी को कश्ती नूह समझता है। दुनिया और अहले दुनिया के साथ थोड़ा बहुत तल्लक ज़रूर है, मगर महज इस वजह से कि रोटी कमाने की मजबूरी है। तुम मुझे अलीगढ़ बुलाते हो, मैं एक अरसा से खुदागढ़ में रहता हूँ और इस मुकाम की सैर कई उम्रों में ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन 1919 में हालात मज़ीद ख़राब हो गए। लाहौर में रोज़ इत्तेजाजी जुलूस निकलते थे। इन्हीं पंजाब के गवर्नर माइकल अडवायर की इंतज़ामिया बुरी तरह से कुचल देती। इसी तरह के एक जुलूस का आंखों देखा हाल खालिद नज़ीर सूफ़ी ने अपनी वालदा और इकबाल की भतीजी के हवाले से यूं बयान किया है। इन दिनों हम अनारकली में रहते थे। एक रोज़ बाजार से बड़ा अजीमुल शान जुलूस गुजरा। बेशुमार नौजवान बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधे और रुलट बिल हाय हाय के फलक शगाफ नहरे लगाते जा रहे थे। हम सब ने दरीचों से इसका नज़ारा किया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बाजार में फिर शोर उठा। हम सब खिड़कियों की तरफ लपके तो ऐसा दिल फगार मंजर नजर आया कि रूह कांप गई। चंद फौजी गाड़ियां जिनमें खून से लथपथ लाशें पड़ी बेतरतीबी से पड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता बाजार में से गुजर रही थी। हर तरफ शोर था कि जुलूस पर गोली चल गई। बड़े बड़े खूबसूरत नौजवान जो अभी चंद लम्हे बेशतर रुलट बेल हाय हाय के नारे लगाते हुए गुजर रहे थे, खून में नहला दिए गए। जिधर से इन शहीदों का जुलूस गुजरता, लोग दहाड़े मार मार कर रोते। ये रूह फरसा नज़ारा देख कर चाचा जान का चेहरा गुस्से और जबत से तम तमा रहा था और इनका दिली करब चेहरे से साफ अयां था। सरदार, चाची जान, वालदा जवेद इकबाल जारो कतार रो रही थी। उन्होंने रोते रोते चाचा जान से कहा, जालमों ने कितनी माओं के लाल मौत के घाट उतार दिए हैं। चाचा जान सर झुकाए खामोश बैठे थे। आहिस्ता से सर उठाकर दिलगीर लहजे और गुलूगीर आवाज़ में फरमाया, मेरे मौला को यही मंजूर है, सरताबी की मजाल नहीं, वो इन शहदा की कुर्बानियाँ ज़रूर कबूल करेगा जिन्होंने अरूस आज़ादी की मांग के लिए अपना गर्म और नौजवान खून पेश किया है। इतना कहा और फिर सर झुका लिया। इस वक्त इनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक एहतजाजी जलसा मुनक्द हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम और सिख अवाम ने शिरकत की। इस जलसे में मौजूद लोगों को घेरे में लेकर जनरल डायर ने बड़ी बेदर्दी से अंधाधुंध गोलियां चलवाईं और सैकड़ों इंसानों को मौत की नींद सुला दिया। इस सहने के मुतल्लिक सर जॉन स्मिथ अपने सवाने हयात में तहरीर करता है कि 13 अप्रैल 1919 की सुबह को जनरल डायर फौज के एक दस्ते के साथ अमृतसर शहर की गश्त पर निकला और ढोल की चोट पर ऐलान करवाया कि जलसा करना या जुलूस करना गैर कानूनी फेल है, इसलिए अगर कोई जलसा मुनक्द हुआ या कोई जुलूस निकाला तो इस पर गोलियां बरसाई जाएंगी। जब वो सिविल लाइन में वापस पहुंचा तो इत्तला मिली कि इसके ऐलान की परवाह ना करते हुए बाद इस दोपहर जलियांवाला बाग नामी दीवारों से महदूद चौक में एक जलसा होने वाला है। चुनचा इसने फैसला किया कि वो इस चैलेंज का मुकाबला करेगा। इसने एक छोटा सा फौजी दस्ता जो खालसतन हिंदुस्तानी नौजवानों पर मुश्तमिल था जलियांवाला बाग के लिए मुंतखब किया। इस दस्ते में 25 जवान गोरखा रेजिमेंट के, 25 जवान फ्रंटियर फोर्स राइफल्स के और 40 गोरखे थे जो सिर्फ कुकरियों से लैस थे। इनके अलावा दो आर्मर डकारें थी। इस दस्ता की कमांड इसके अपने हाथ में थी। गो कैप्टन बर्गस भी इसके हमला था। जब वो मौके पर पहुंचा तो 10 से 20 हजार तक की तादाद में लोग मौजूद थे और इनकलाबी रहनुमा बड़ी जोशीली तकरीरें कर रहे थे। आर्मर्ड कारें आगे ना बढ़ सकती थीं, इसलिए जनरल डायर सफा नंबर 521 अपने साथ 50 अस्करी लेकर मजमा में दाखिल हो गया। अस्करियों को देखकर हजूम बिफरने लगा, जिस पर जनरल डायर ने बगैर किसी तनबिया के गोली चलाने का हुक्म दिया। फौजियों ने हुक्म तमीले हुक्म में 1650 राउंड चलाए, गोया फी फौजी औसतन 35 राउंड चले। हजूम में अफरा तफरी फैल गई, बहुत सोने दीवारें फांग कर भागना चाहा, लेकिन कामयाब ना हो सके। दीवारों से घिरे हुए इस रकबे में राइफलें चलने की गूंज कानों के पर्दे फाड़ रही थी और हजूम की चीखों पुकार में सीज फायर का कोई हुक्म ना सुना जा सकता था। इस सहने में जो लोग मारे या जख्मी हुए, इनकी तादाद का सही अंदाज़ा आज तक नहीं लगाया गया। क्यास है कि मरने वालों की तादाद 300 और जख्मी होने वालों की तादाद 1300 के लगभग थी। फिर इनको वहां से उठवाने का भी कोई इंतजाम ना किया गया। इकबाल ने इस सहने से मुतासर होकर ये अशआर कहे, हर जायर चमन से ये कहती है, खाक के पाक गाफल ना रहे, जहां में गुर्दों की चाल से सींचा गया है खून शहीदां से, इसका तुखम तू आंसुओं का बुखल ना कर इस नहाल से। जलियांवाला बाग के सहने के फौरी बाद माइकल अडवायर के हुक्म से पंजाब में मार्शला नाफज कर दिया गया। इस मार्शला के दौरान तलब इल्मों और अवाम से जो वहशियाना सलूक करवा रखा गया, इसकी तफसील आशिक हुसैन बटवालवी की तसनीफ में मिलती है, जो इन दिनों लाहौर में मौजूद थे, वो तहरीर करते हैं। इस माइकल अडवायर ने लाहौर, कसूर, अमृतसर, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा और लैलपुर में मार्शल आर्ट जारी करके मुजालम की वो आग बरसाई जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में सिर्फ 1857 का कश्त व खून ही पेश कर सकता है। 14-14 बरस के बच्चों को टिक टिक्की में बांध कर कोड़ों की सजा मुकर्रर थी। हालांकि बड़े से बड़े सख्त जान की खाल भी 6 कोड़ों के बाद उदड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। हर मल्ले से चुन चुन कर मुअज्जिन को घरों से निकाला गया ताकि खुले बंदों इनकी तजलील हो। वो लोग जो अपनी काबिलियत की बिना पर आइंदा हाई कोर्ट के जज और सूबे के वजीर बनने वाले थे, इन्हीं गोरा फौज के सिपाहियों से पिटवा कर फांसी के मुजरमों की कोठरियों में बंद किया गया। मई की गर्मी में लाहौर के कॉलेजों के तलबा को हुक्म दिया गया कि वो अपने सरों पर अपने बिस्तर उठाकर दिन में 4 मरतबा 16 मील का फासला तय करके आएं और यूनियन जैक को सलामी दें। लाहौर के तमाम बशिंदों को हुक्म मिल गया कि वो अपनी मोटर कारें, साइकिलें, बिजली के पंखे और बिजली के लैंप फौज के हवाले कर दें। स्कूल के बच्चों को हर रोज़ धूप में खड़े होकर एक फौजी अफसर के सामने ये कहना पड़ता, हुजूर हमने कोई कसूर नहीं किया, हमारी तौबा, आइंदा भी हमसे कोई खता सरजद नहीं होगी। एक पूरी बारात को जिसमें दूल्हा भी शामिल था बिला वजह पकड़ कर कोड़ों से पटवा दिया गया। रेलगाड़ियों पर आजादाना सफर की ममानत कर दी गई, औरतों की खुले मुंह बेहुरमती की गई, एक गली मुकर्रर की गई जिसमें हर शख्स को पेट के बल रींगते हुए गुजरना पड़ता था। ऊपर गोरा फौज का सिपाही हाथ में बंदूक थाम कर खड़ा रहता और अगर रींगने वाला शख्स जरा दम लेता तो सिपाही बंदूक का कंधा इसकी पुश्त पर मारता था। शहर के बाज मुअज्जज और सरबर आजदा लोगों के मकानों पर मार्शला के हकाम के इश्तिहार चस्पा कर दिए जाते थे और हुक्म था कि अगर किसी ने इस इश्तिहार को फाड़ दिया तो मालक मकान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुनच्चा साहब खाना को महज अपनी इज्जत व नमूस की खातर हफाजत के लिए दिन भर अपने मकान से बाहर खड़ा रहने की जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ती थी। दयाल सिंह कॉलेज की बैरूनी दीवार पर किसी नामलूम शख्स ने एक इश्तिहार लगा दिया जिसका मजमून फौजी अहकाम के नज़दीक काबिल एतराज़ था। इस जुर्म की पदाश में कॉलेज के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्म सादर हुआ कि जो ही कोई अंग्रेज नजर आए, मुकामी बशिंदों का फर्ज है कि फौरन तांगे से उतरकर खड़े हो जाएं और झुककर सलाम करें। सफा नंबर 523। एक 25 फुट लंबे और 12 फुट चौड़े कमरे के अंदर मई के महीने में 50 आदमियों को बंद कर दिया गया, जहां वो हफ्ता भर मुकैद रहे और इन्हीं बोल व बाजार के लिए भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। कसूर में मनादी कर दी गई कि जो लोग 10 अप्रैल 1919 से पहले या इस तारीख के बाद शहर से बाहर गए हुए थे, अगर 4 रोज़ के अंदर वापस ना आए तो इनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। जब अदालतों के सामने मुकदमात पेश होने लगे तो सफाई की तरफ से किसी वकील की को पैरवी करने की इजाज़त नहीं थी और मुलजमों को फांसी और उम्र कैद के अलावा मुश्किल ही से कोई और सजा मिलती। कसूर में 27 आदमियों को फांसी और 13 को उम्र कैद की सजा हुई। गुजरांवाला में 5 आदमियों को फांसी और 10 की हबस दुआम की सजा हुई। हाफिजाबाद में 4 को फांसी और 15 को हबस दुआम की सजा मिली। निजामाबाद में 4 को फांसी और 8 को उम्र कैद की सजा हुई। अमृतसर में 34 को फांसी और 15 को हबस दुआम की सजा मिली। इसी तरह लाहौर और अमृतसर ऐसे शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बात तक में सजाओं की वो भरमार हुई कि इसकी मिसाल पहले कभी ना देखी गई थी। एक शख्स को महज इस जुर्म में कि इसने एक पुलिस अफसर को मुखातब करके कहा था कि तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, आओ हमारे साथ मिल जाओ, हबस से दुआम की सजा मिली। ये सब कुछ माइकल अडवायर की आंखों के सामने इसकी मंजूरी और रजामंदी से होता रहा। अब्दुल मजीद सालक तहरीर करते हैं, अब पूरा मुल्क बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत इत्तेजाज और तनफर का हंगामा जार बन रहा था। मुसलमानों के दिलों पर जलियांवाला बाग और पंजाब के मजालम से भी ज्यादा गहरा चरका तुर्की की शिकस्त से लग चुका था, जिसकी वजह से खतरा था कि तरकान आले उस्मान की आज़ादी व खुद मुख्तियारी खलाक में मिला दी जाएगी। खिलाफत इस्लामिया की मसनद के गिर्द फरंगी गिर्द मंडला रहे थे। सफ़ा नंबर 524। इसी साल के अवाखर में मौलाना मोहम्मद अली 4 साल की नज़रबंदी काट कर 22 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जलसा में शरीक होने के लिए लखनऊ पहुंचे और इसी एहतजाजी जलसा में खिलाफत कॉन्फ्रेंस कायम की गई। 23 सितंबर 1919 को दिल्ली में जलसा हुआ, जिसमें गांधी और चंद हिंदू रहनुमा भी शरीक हुए। इस इजलास में खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने तय किया कि मुसलमान ने हिंद तरकिया की तकसीम उस्मानी सुल्तान खलीफा के अख्तियारात में तख़फीफ और मुस्लिम मकामात मुकद्दसा पर गैर मुसलमों के कब्जे के खिलाफ मुजाहरे करें, अंग्रेज़ी हुकूमत से अदम तामन का रवैया अख्तियार करें और अंग्रेज़ी माल का मक्का तमा करें। बाद में मौलाना मोहम्मद अली बाहसियत कायदे तहरीक खिलाफत लाहौर पहुंचे और इकबाल से मिलने के लिए अनारकली वाले मकान में गए। इकबाल बैठक में धुस्सा ओढ़े बैठे हुक्का के कश लगा रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली ने से इनकी खासी बेतकल्लुफी थी। मौलाना मोहम्मद अली ने इन्हें देखते ही तंजन कहा, जालम हम तो तेरे शेर पढ़कर जेलों में चले जाते हैं और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तू वैसे का वैसा धुस्सा ओढ़े हुक्के के कश लगाता रहता है, गोया कुछ हुआ ही नहीं। इकबाल ने बरजस्ता जवाब दिया, मौलाना मैं तो कौम का कवाल हूँ, अगर कवाल खुद ही वजदो हाल में शरीक होकर हु हक में ताहबाला होने लगे तो कवाली ही ख़त्म हो जाए। बहरहाल इकबाल ने खिलाफत कॉन्फ्रेंस के एक आध जलसे में शिरकत की और सूबाई खिलाफत कमेटी के रुकन भी बन गए। दिसंबर 1919 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जलसे अमृतसर में हुए। इन जलसों में मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली गांधी, मोतीलाल नेहरू और दीगर बड़े बड़े रहनुमा भी शरीक हुए। इकबाल और मिर्ज़ा जलालुद्दीन खिलाफत कॉन्फ्रेंस के जलसे की रौनक देखने के लिए नवाब सर जुल्फकार अली खां की मोटर कार में अमृतसर पहुंचे। जब पंडाल में दाखिल होकर इकबाल अली बरादरान से बगलगीर हुए तो जलसा में आवाम के जोशो खरोज का अजीब आलम था। सफ़ा नंबर 525। अक्सर लोग रो रहे थे। इस मौके पर दोनों भाइयों को मुखातब करते हुए इकबाल ने वो अशआर जलसे में पढ़कर सुनाए जो बांगे दरा में असीरी के अनुमान के तहत मौजूद हैं और जो इसी रोज़ मोटर कार में सफ़र के दौरान मौजू हुए थे। दिसंबर 1919 ही में इतिहादी ताकतों के तुर्की के साथ नामनासब सलूक पर एक इतजाजी जलसा आम सर फजल हुसैन की सदारत में मोची दरवाज़ा के बाहर मुनक्कद हुआ। इस जलसे में इकबाल ने अकबर अलाहाबादी का ये शेर पढ़कर करारदाद पेश की, जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा, सुकूने दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। मुसलमानों ने लाहौर इस जलसे में उस अजीम परेशानी और बेचैनी का इजहार करते हैं जो पेरिस की सुलह कॉन्फ्रेंस में अब तक सल्तनत उस्मानिया और खलीफतुल मुस्लिमीन के मुतल्लिक काबिले इत्मीनान फैसला ना होने से लाहक हुई, और हुकूमत को वो वादे याद दिलाते हैं जो मिस्टर लॉयड जॉर्ज वज़ीर आज़म बरतानिया ने जनवरी 1918 में तमाम इस्लामी दुनिया से सल्तनत तुर्की के मुतल्लिक किए थे, और पेरिस की सुलह कॉन्फ्रेंस के उन असूलों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं जो प्रेसिडेंट विल्सन ने अपने ऐलानों में कायम किए थे और जिनकी बिना पर इस अजीमुल शान जंग का खात्मा किया गया, और बाइसरार तमाम दरख्वास्त करते हैं कि जिन असूलों पर इतिहादियों ने अपनी इसहाई दुश्मन सल्तनतों से करारदाद की है, इन्हीं असूलों पर मुसलमान सल्तनतों से भी सुलह अंजाम पानी चाहिए, और सल्तनत उस्मानिया के किसी हिस्से पर सरातन या इशारतन किसी दूसरी सल्तनत का कब्जा नहीं होना चाहिए। करारदाद की हमायत में तकरीर करते हुए इकबाल ने कहा, जिस कौम ने दुनिया में आज़ादी और हुर्रियत की अशात की थी, आज उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। जब बनी नौ इंसान को पमाल किया जाता था, उस वक़्त उस कौम ने मसावात का प्रचार किया। सफ़ा नंबर 526। मुसलमानों, तुमको याद है जब अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर जुमा पैदा हुए, उस वक़्त दुनिया की क्या कैफियत थी? कस्तनतुनिया में कैसर की सख्ती यूरोप की कौमों का गला घोंट रही थी। उस वक़्त ये अमर वाज़े किया गया था कि खुदा की अतात के सिवा किसी और की अतात ना की जाएगी। तुम्हारा मजहबी अकीदा है कि इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए, खुशामद, मिन्नत या मांगे से कभी कुछ नहीं मिलता। खुदा के सिवा किसी की अतात हमारे लिए वाजिब नहीं। याद रखो कि जो कौम एक बड़ा मकसद लेकर पैदा हुई है, वो यूं ही नहीं मिट सकती। बादशाहियाँ मिट रही हैं, इंसान ने अपने फितरी हकूक का दावा पेश किया है। तुम्हारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। प्रेसिडेंट विल्सन ने 14 असूल कायम किए जिनके मुताबिक आलमगीर जंग का फैसला किया जाना था। इनमें एक बात ये थी कि हर एक कौम अपने मामले को खुद फैसल कर लिया करे। हमारी सरकार ने बारहा इस बात का ऐलान किया कि हम हक, इंसाफ और सदाकत के लिए लड़ रहे हैं। हमारी जंग इसलिए है कि बैन अल-क़वामी मुआहदे कायम रखे जाएं। हम भी यही कहते हैं कि हमारे हकूक का ख्याल रखा जाए और इनको पामाल ना किया जाए। खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने अपने इजलास में तय किया कि खिलाफत फंड के लिए 10 लाख रुपया जमा किया जाए, और इस रकम से एक खिलाफत वफ्द इंग्लिस्तान भेजा जाए जो उस्मानी खिलाफत को कायम रखने के सिलसिला में मुसलमानों के मुतालबात हुकूमत बरतानिया के सामने रखे। इसी असना में उलमा ने भी इलमी सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और इनकी तंजीम जमीयत उलमाए हिंद खिलाफत कॉन्फ्रेंस की करारदादों की तायद फतवों की सूरत में करने लगी। इनके इजलासों के सबब खिलाफत कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में इतिहाद हो गया, और उलमा मुस्लिम कायदीन व अमाम ने गांधी को अपना कायदे आला तस्लीम कर लिया। इकबाल अगरचा सूबाई खिलाफत कमेटी के रुकन थे, लेकिन इनका खिलाफत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से दो बातों पर शदीद इख्तलाफ हो गया। अव्वल ये कि इकबाल खिलाफत वफ्द के इंग्लिस्तान भेजने के हक में ना थे।